समय सार कुंदकुंदा आचार्य भगवान का शास्त्र है और उसके हम 17 और 18 नंबर की गाथा देख रहे हैं और इस पर जो स्वामी जी के प्रवचन हुए हैं उसके पृष्ठ क्रमांक 29 पर हम आए हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर का जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, कल तो बात ये हुई थी कि हम अपने स्वरूप को, स्वभाव को पहचानना, यही एकमेव मार्ग है जिससे हम अपना भला कर सकते हैं। जैसे शास्त्र में बताया गया है वैसा मेरा स्वभाव है, ऐसी श्रद्धा होना, ऐसा ज्ञान होना और उसी में एकाग्रता करना, उसके लिए उन्होंने तो वो धनार्थी जीव का उदाहरण भी दिया था। कह रहे थे कि वह जैसे राजा को पहचानता है, पहले उसको जानता है, फिर खातरी करता है और फिर उसी को श्रद्धा करता है और उसका अनुसरण करके वह धन की प्राप्ति करने की पुरुषार्थ भी करता है, वैसे यहाँ पर भी इस जीव को अपने स्वभाव को, अपने आत्मा को जानना है और यही मैं हूँ ऐसी श्रद्धा करनी है और उसी में एकाग्रता करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्योंकि हमने देखा था साध्य साधक भाव, दोनों भावों से आत्मा को ही हमें जानना है कहो या एक्सेप्ट करना है कहो या उससे ही अवलंबन लेना है। इसी बात को ये हमें उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। तो कहते हैं अभी आगे, अरे रे 84 ना उतार मां ए दुखी छे, एने एना दुखनी खबर नथी। ए एटले आ संसार मां भमतो जीव, पण ए आकुलताना वेदन मां छे भाई, जैन ना वेदन मां, स्वना वेदन मां नथी। क्या कह रहे? देखो, जो स्व का वेदन करता है वह जैन है, ये बात नक्की हो गई। जैन किसको कहना? कि जो स्व को जानता है वह जैन। ये जैन कुल में जन्मा है इसलिए जैन नहीं, क्योंकि ऐसे तो अनंत बार जैन कुल में इसने जन्म लिया है लेकिन अब तक तो सही जैन बना ही नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो कितनी दो छोटे वाक्य दिए, क्या समझा रहे हैं कि भाई जैन ना वेदन मा, स्व ना वेदन मा नथी। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो स्व का वेदन करते हैं वही जैन है। जैन वेदन यानी क्या? अपने स्वभावी जो अपना स्वभाव है आत्मा, न्यायिक स्वभाव आत्मा का जिसने अनुभव नहीं किया है वह जैन नहीं है। क्योंकि जैन यह जो शब्द है ना, तो जैन यह शब्द जो है तो उसका अर्थ है जी इज इक्वल टू विन, कॉन्कर, जीतना है। तो किसको जीतना है? तो कहते हैं अपने में रहने वाले जो शत्रु है, जो राग द्वेष रूपी जो शत्रु है, शुभ अशुभ भाव रूपी जो शत्रु है, उनको जीतना। और उनको जीतने का तरीका क्या है? उनसे लड़ते बैठना। तो कहते हैं उनको इग्नोर करो, उनके तरफ देखो ही मत, और जो अपना वितराग स्वभाव है उस स्वभाव में एकाग्र हो जाए। तो यह जीव जिसने आंशिक राग द्वेष का नाश किया है और जिसने मोह का पूर्णपने नाश किया है, यानी जिसने दर्शन मोहनी कर्म का अभाव किया है कहो, और आंशिक राग द्वेष का नाश किया है, उसी को जैन कहेंगे। और जो मुनिराज होंगे उनको जिनवर कहेंगे, और जो तीर्थंकर है अरहंत है वो जिनवर वृषभ है। ख्याल में आए? तो यहां तो ये समझा रहे हैं कि जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है वही जैन है, और वही जैन का वेदन है। तो क्या समझाए? देखो भाई, जैन ना वेदन मा स्व ना वेदन मा नथी। छ ढाळा मा चौथी ढाळ मा आवे छे के ए आकुलता ना वेदन मा साधु थई। नवमी ग्रेवे के गयो, क्या कहते हैं? उसने क्या किया? आकुलता का वेदन किया। कौन सा आकुलता? शुभ परिणाम किए। कौन से शुभ परिणाम? तो कहते 28 मूल गुण पालन करने की आकुलता। वे एक एक शब्द को हम अगर तह तक पहुंचेंगे तो बात ऐसी है कि उसका कोई पार नहीं है। तो क्या समझा रहे हैं? तो कहते हैं कि आकुलता ना वेदन मा साधु थई। राग के वेदन में साधु हुआ और नवमी ग्रेवे के गयो। अभी देखो बात तो ऐसी है, ये थोड़ा सा समझने जैसी बात है। यहाँ तो कहते हैं जो आत्मा का अनुभवी नहीं है फिर भी जिसने बाह्य में नग्नत्व धारण करके 28 मूल गुण पालन यथोचित आगम के अनुसार 28 मूल गुण का पालन भी किया है, 28 मूल गुण पालन करने में आत्मा में बहुत मंद कषाय होने की आवश्यकता होती है, उसके बगैर वो 28 मूल गुण पालन करने की शक्ति नहीं है। तो कषायों की मंदता होती है, और उस कषायों की मंदता के कारण यानी शुभ परिणामों के कारण यह जीव आत्मानुभूति नहीं करते हुए भी नौवे ग्रेवे तक जाता है। ख्याल में? तो यहां पर ये समझा रहे हैं कि ये आकुलताना वेदन मा साधु थई। साधु होना कोई आकुलता का वेदन नहीं है, वो तो अति प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वहां स्वाद वह ले रहे हैं, लेकिन केवल शुभ भाव में अटके रहना यह आकुलता का वेदन है। नहीं तो आप मानोगे अरे मुनि होना यानी आकुलता का वेदन है, भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा मुनि पर, हमको तो डायरेक्ट केवल ज्ञान चाहिए, हमको अन्य कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ख्याल में? मुनि वो मुनिपना धारण करके क्षपक श्रेणी मांड कर जो ऊपर चढ़ेगा, श्रेणी आरोहण करेगा, वही जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और बिना मुनिव्रत धारण किए, बिना मुनिपद धारण किए, कोई डायरेक्ट अन्य मार्ग से हम अरहंत हो जाएंगे, धोखे में मत रहना ऐसा। तो फिर भी हम समझे कि मुनि व्रत धारण करने में आकुलता नहीं होती है, क्योंकि जब इस जीव के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता की पैदाइश हुई है, वितरागता स्थापित हुई है, ऐसे जीव के परिणाम सहज रूप से 28 मूल गुण पालन करने के लिए उनको उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं लगती है कि अरे हम तो खुले पग रस्ते पे चलना है तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है। ख्याल में? अभी तो अपने यहाँ सीमेंट रोड फिगर हो गए, पहले के जमाने में कहाँ थे? वन में यहाँ से वहाँ गुजरना और ऐसा देख देख के चलना, यानी कांटा नहीं है वहाँ, नहीं ऐसा नहीं जीव का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं ना, ये देख के चलना है, चारा जमीन देख के चलना। क्या अभी हमने देखा ना, ये जीव पर की दया पालता नहीं है, वो ये तो स्व की दया पाली, ऐसा है वो। तो क्या समझा रहे हैं? तो ए आकुलता ना वेदन मा साधु थई। नवमी ग्रेवे के गयो, એને પંચ મહાવ્રત અને 28 મુલકુંડનું પાલન કર્યું, પણ એ આકુળતાનું વેદન હતું. મુનિવ્રત ધાર અનંત બાર ગ્રહવે એક ઉપજાયો, પૈ નિજ આત્મ જ્ઞાન વિના સુખ લેશ ન પાયો. એ જીવને એક બાર નહીં, દો બાર નહીં, અનંત બાર મુનિવ્રત ધારણ કે કૈસા એ દ્રવ્યલિંગી મુનિ હુઆ હે, લેકિન ક્યા હુઆ, આત્મજ્ઞાન કે બિના એક પરસેન્ટ ભી, તસુભર ભી, રંચ માત્ર ભી સુખ લેશ ન પાયો. લેશ ન પાયો એને ક્યા, જરા ભી સુખ કે ઉસકે અતિન્દ્રિય સુખ કા અનુભવ નહીં હુઆ હૈ. ફિર ભલે વો જાવે નવમી ગ્રહવે તક, મંદ આકુળતા હતી ને, મંદ પણ આકુળતા હતી ને, તેથી તો કહ્યું કે સુખ લેશ ન પાયો.
દેખો યહાં મંદ આકુલતા કહા હૈ, તો યે મંદ આકુલતા એક કષાય કે અભાવ વાલી હૈ કે તીન કષાય કે અભાવ વાલી હૈ, બોલો. હા હા, આપ કહો તીન કષાય કે કહે રહે, આપ ક્યા કહેતે હૈ? ચારો કષાય કે અભાવ કી, ચારો કષાયો કે, હા આપ ક્યા કહેતે હૈ નલિનભાઈ? સૂક્ષ્મ લોભ હૈ અભી, અભી એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ. અનંત બાર સાધુપદ, અનંતાનુબંધ, એ જો મંદ આકુલતા, મંદ કષાય કહા ના, મંદ કષાય ભી અનંતાનુબંધી વાલા મંદ કષાય ચલ રહા હૈ. અનંતાનુબંધી મેં ભી તીવ્ર સે મંદ તક બહોત સારી વેરિએશન્સ હૈ, ક્યુંકિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોતે હુએ ભી પંચ મહાવ્રત ધારણ કરને કા પરિણામ હૈ વો તો મંદ કષાય કા કારણ હૈ, પરંતુ વો કષાય કૈસી હૈ, અનંતાનુબંધી વાલી હૈ, યાની વો 28 મૂલગુણ પાલન કરને કા ભાવ જો ઉનકા ચલ રહા હૈ, ઉનકા હો, વો અનંતાનુબંધી કા કાર્ય હો રહા હૈ. और जो भावलिंगी संत है उनके जो वो तो उनके तो संज्वलन का कार्य है, ख्याल है? अपने सातवें गुणस्थान की अपेक्षा बताए छठे सातवें की, परंतु यहाँ किसकी बात चल रही है? द्रव्यलिंगी अनंत बार नवे ग्रहवेक में जाने वाला जो सच्चा भावलिंगी संत होगा वो अनंत बार नहीं जाएगा, इतना उसका भव भ्रमण नहीं होता. देखो द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी की यहाँ बात हो रही है. जैसे अभी हम जो कोई व्रत के परिणाम नहीं है तो हमें तो तीव्र आकुलता है, और जो 28 मूल गुण पालन करने का परिणाम है, अन्य विषयों की उसको रुचि नहीं है, परंतु व्रत पालने का परिणाम है. परंतु वैसे देखा जाए शास्त्रीय दृष्टि है, वो तो अनंतानुबंधी वाली आकुलता है उनके भी, क्योंकि उस राग में उनकी एकता बुद्धि चल रही है और उसको यानी मिथ्यात्व की पूरी आकुलता वहां है, ख्याल है? और उसी को मोक्ष मार्ग माना भी है उन्होंने, और अपने को मानते कि मैं सही रास्ते पर हूं. यानी ऐसे तो है तो मंद कषाय, परंतु वहां उनकी मिथ्यात्व वाली अनंतानुबंधी वाली तीव्र आकुलता चल रही है. उस अपेक्षा से देखेंगे तो ये मंद कषाय रूप भाव है जिसको भद्र परिणाम है, बस इतना ही. हाँ हाँ, देखो आपका ऐसा प्रश्न है कि यहाँ तो द्रव्यलिंगी मुनि है, जैसे शास्त्र में बताया वैसे आचरण भी कर रहे, व्रताओं के परिणाम भी है, उनके तो आपने मंद कषाय कहा, अनंत अनुबंधी वाली मंद कषाय. अब जो मिथ्या दृष्टि है, अब जिसके ऐसे व्रतों के परिणाम नहीं है, तो हम कहेंगे उसके ऐसे मंद परिणाम नहीं है, तीव्र कषाय वाले हो गए. कषायों के तो कितने ही भेद है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तो उसमें तो जो जिस जीव के जो है पॉसिबल वो ऐसे होंगे उसके, परंतु कषायों की मंदता हुई इसलिए वो उसको जल्दी मोक्ष मार्ग मिलेगा ऐसा नहीं है, ख्याल आया ना, क्योंकि वो है तो अनंतानुबंधी के कारण वो आचरण कर रहा है उसकी। अभी उसमें भी ऐसे मुनि होंगे कि वो अपने को मुनि नहीं मान रहे हैं, उसमें भी है ना, क्योंकि पहले गुणस्थान से सातवें में जाने वाले भी ऐसे द्रव्योलंगी मुनि ही तो जाएंगे, या ग्रेवेक में जाकर वहां सम्यक तो प्राप्त करेंगे ऐसे भी जीव। तो वो तो अपनी पोजीशन जानते हैं कि मैं तो अभी सच्चा मुनि नहीं हूं, ऐसा भी जानने वाले होते हैं। यहां तो इतनी बात है कि यहां मंद आकुलता कही या मंद कषाय कहे तो भी ये अनंतानुबंधी वाले मंद कषाय चल रहे हैं, द्रव्यलिंगी की बात हो रही है।
देखिए यहां पहले में पहले इस जीव की यही भूल होती है कि मंद कषाय रखना ही अच्छा है, तीव्र कषाय नहीं रखना चाहिए, ख्याल में, यानी इसमें डबल भूल ऐसी है कि यहाँ हम मंद कषाय के कारण हमें अच्छा बंध होगा वो अच्छा, और तीव्र कषाय के कारण हमें बुरा बंध होगा वह बुरा। यह तो बंध और आश्रव दोनों तत्व संबंधी भूल है। अब यहाँ तो बहुतांशी जीवों के ऐसा ही कहना है कि अरे मंद कषाय तो है ना, मंद कषाय तो है ना, लेकिन वो मंद कषाय के पीछे वो अति महामिथ्यात्व के जो परिणाम है कि ये शुभ राग करते करते ही मुझे धर्म होगा, ऐसे जो मिथ्यात्व के परिणाम है वो तो किसी को दिखते नहीं। और बाह्य में घर बार छोड़ा, मुनिव्रत धारण किया, लुगड़ा फेरव्या, स्वामी जी बोलते ना, हाँ, तो उसमें अपने को लगता है इन्होंने बहुत कुछ तीर मार दिया। स्वामी जी तो ऐसा बताते थे और शास्त्र में भी आता है कि जो मुनि है कौन, द्रव्यलिंगी, अरे उसके शरीर पर ऐसे जख्म किए जाए ब्लेड से समझो अपन, और उसके ऊपर मिर्च या नमक भी छिड़के तब भी उसकी आंख की कुनी भी लाल नहीं हुए, मतलब बिल्कुल ऐसे शांत, बिल्कुल क्रोध नहीं आए, फिर भी कहते हैं वह संसार मार्गी है। क्यों कि उनमें जो मंद कषायपना जो है, मंद कषाय जो है, उस कषायों के कारण यह मोक्ष मार्ग नहीं चलता है, मोक्ष मार्ग आक्रमित नहीं होता है। वहां तो अपने स्वरूप का जिसने अनुभव किया है उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और हम लौकिक में भी देखते हैं ना, हम एक दूसरे को कहते हैं क्या कि तुम रोज स्वाध्याय करते हो, ऐसा झगड़ा करते हो, तुम्हारे से तो हम अच्छे, क्या हम स्वाध्याय तो नहीं करते, लेकिन हम किसी के ऊपर ऐसा क्रोध तो नहीं करते, किसी के ऊपर हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ दुकान में जाते और वहां पैसा मिलाने का लोभ करते हैं। वो लोभ ही कषाय है ये नहीं जानते, ये क्रोध करना ही कषाय है इतना ही जानता है, ख्याल में, तो वो समझते कि क्रोध करना ये तीव्र कषाय है और सब क्रोध दबाना वह मंद कषाय, ऐसा नहीं है। तो यहां मंद कषाय जो बताए जा रहे हैं वह भी क्वालिटी कौन सी है उसकी, तो अनंतानुबंधी की ही है, क्योंकि उसके तो संज्वलन तो है ही है, प्रत्याख्यान भी है, अप्रत्याख्यान भी है और अनंतानुबंधी, चारों ही मौजूद है, ख्याल में। और यह जो पांच महाव्रत धारण करने के या 28 मूलगुण पालन करने के जो कोई परिणाम है, इसमें कषायों की इतनी मंदता लगती है कि उसके आगे गृहस्थ कितनी भी मंद कषाय करे उसके सामने नहीं खड़ी रहती, इसलिए तो वह नौमी ग्रेवेक तक जाता है, ख्याल में, कोई अन्य जाता नहीं है नौमी ग्रेव, मिथ्या दृष्टि हो, जिसने जैन 28 मूलगुण पालन करने के नक्की किया है और मुनि अवस्था धारण की है फिर भी आत्मानुभूति नहीं हो रही है, वह राग का मैं करता हूँ राग से धर्म होगा ऐसी बुद्धि कहीं ना कहीं उसकी पड़ी हुई है, इसलिए तो वो मिथ्या दृष्टि है। अब चाहे जितने मंद परिणाम करे फिर भी वह मोक्ष के हेतु कुछ काम का नहीं, इसलिए तो कहा मैं निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो कहते हैं मंदाकृता तो हती ने, पन मंद आकुलता हती ने तेथी तो कयूं के सुख लेश न पायो बापू आ तो वितराग स्वरूप आत्मानो मार्ग छे आ आत्मा छे तेनु आचरण करवाथी जरूर कर्मोती छुटाशे तेनु आचरण करवाथी अने उसमें स्थिर होने से कर्म छूट जाएंगे एवी श्रद्धा मा एम आवुं के निज न्याय भाव मा जेटली रमणता करशे तेटलू चारित्र थशे अने तेटलू कर्मोती छुटाशे पेला श्रद्धा मा ज आम जणायुं लोगों ने आकरू लागे पन शू थाय ये हमको एक भाई मिले थे वो बोलते थे कि भाई तुम बहुत कड़क बोलते हो हाँ जरा हड़वे हड़वे बोलना चाहिए क्यों सब क्या होगा तो तुम्हारे पास आने वाले कम हो जाएंगे। मैंने कहा आपने मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ा है क्या क्या है हमने तो पढ़ा तो है क्या है लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि मिश्री खाने से अगर गधा मर जाए तो आदमी मिश्री खाना नहीं छोड़ता है मिश्री शक्कर अभी हमने देखा नहीं कभी गधा मरता होगा कुछ लेकिन उसमें तो लिखा है ऐसा यानी यह जो मोक्ष का मार्ग जो है जो सही स्वरूप है वो हम लोगों के भय से डर से बोले ही नहीं तो कैसा होगा यानी भले 100 आदमी में से एक आदमी भी पक जाए और वह भी सच्चा स्वरूप समझे और अपना कल्याण कर लेवे तो भी वह कार्यकारी है लेकिन ये नाराज होगा वो नाराज होगा ये नाराज होगा ऐसे करके बात बोले वो सच बात बोल ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो लोग आते हैं ना भाई यहाँ स्वाध्याय के लिए आते वो अपने लिए आते अपने कारण से आते हैं। मैं तो कहूंगा अपना राग के कारण आते हैं और जो जाएंगे वे भी अपने कारण से जाएंगे। क्या हम अगर समझते कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए यहाँ बहुत भीड़ है हम बहुत कड़वा बोलते हैं इसलिए सारी भीड़ निकल गई ऐसा कुछ नहीं है। बात तो ऐसी है कि यहाँ जो बात अभी ऐसा है ना कि जोर से नहीं बताए यानी फर्मली नहीं बताए तो ये जीव को ख्याल में भी नहीं आती है। यहाँ तो बोल रहे हैं ना स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि लोगों ने आक्रू लागे तो उन्होंने चिंता की होगी ना अरे कल तो इतने आदमी तो आज कम हो गए हाँ अच्छा नहीं है कल से जरा मस्का वाली बात करेंगे पण शू थाय आई कहे छे के आत्मा एकलो ज्ञेय थईने अंदर ज्ञान मां जणायो त्यारे तेने आ आत्मा छे एम श्रद्धा थई त्यारे ए श्रद्धा मां एम आयवुं के आ न्यायक भाव जे भगवान आत्मा तेनु अनुचरण करवाथी एमा ठरवाथी कर्म जरूर छूटशे पण पंच महाव्रतना विकल्प ए आत्मानु अनुचरण नहीं हुआ थी तेनाती कर्म छूटशे नहीं अंदर एक न्यायक भाव में एकाकार थवूं एमा रमवूं चरवूं जामी जमूं आनंदनु वेदन करवूं एनाती कर्म छूटशे मलिन परिणाम छूटशे आवी वात छे भाई दुनिया साथे मेल खाए एम नथी पण शू थाय आत्मा मां रमे ते राम कहिए अन्यत्र रमे ते हराम छे एटले कुचारित्र छे अभी ऐसा है स्वामी जी के पुण्य का इतना उदय था कि किसी की विषाद नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोले जाके हर एक का ऐसा पुण्य नहीं होता है। वास्तव में तो ये वास्तविकता है भाई क्या कि जो अपने स्वरूप में है वही आत्मा राम हो जाएगा, मतलब आत्मा में रममान हो जाएगा, तो वो राम है और बाकी तो सब ऐसी है। आत्माना आनंदमा रमवू निजानंदमा रमवू ये चारित्र छे। हवे लोको काई ने काई क्रिया ने बारना पंचमहाव्रतादी ने मोक्षनो मार्ग एटले मोक्षनो साधन माने छे, पन भाई ए काई साधन नथी, परंतु निमित्त थी कथन करीने कह्यू छे त्रण लोकनो नाथ जे सिद्ध स्वरूपी परमात्मा एनु ज्ञान श्रद्धान थाय त्यारे एमा ठरे। ये त्रण लोकनो नाथ ये कौन है? आदिनाथ भगवान है के महावीर? स्वयं स्वयं त्रण लोकनो नाथ जे सिद्ध स्वरूपी परमात्मा एनु ज्ञान श्रद्धान थाय त्यारे एमा ठरे। यानी पहले ज्ञान होगा, फिर श्रद्धान होगा, फिर स्थिरता होगी। तीनों बातें बताइए। ए न्यायक स्वरूप आनंद घन भगवान आत्मा मां चरवू रमवू लीन थवू स्थिरता करवी ए अनुभव छे, ए चारित्र छे। प्रभावेन हम क्या समझते थे पहले? ये व्रत किए, उपवास किए, ऐसा किए, हमने चारित्र धारण किया। अभी बात ख्याल में आती है ना कि अपने स्वरूप का अनुभव करना यही चारित्र गुण की स्वभाव परिणति है। क्या करें, अपना ही नसीब खोटा था कि हमें सच्चा मार्ग मिलने में टाइम लगा। क्यों? उसमें हम दूसरे को दोष नहीं सके, हमको सिखाने वाले कोई नहीं थे। अरे सिखाने वाले तेरी पात्रता नहीं थी, तुझे निमित्त नहीं मिला। अब तेरी पात्रता हो गई, आगे बढ़, उसमें क्या है? कहीं छे ने के अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये अनुभव ही है वह चिंतामणि रत्न है, वह रसकूप है। ये बात अपनी पहले हो गई थी। और वह मोक्ष ही है, मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष स्वरूप है। केटला कहे छे के कांजी स्वामी नु आ बधु एकांत छे, पण एम नथी। ये जो कहा है ना, ये तो बनारसी दास जी ने बताई हुई बात है। कारण के आई तो सम्यक एकांत सिद्ध करे छे के एमा एटले आत्मा मां ज आचरण करवू, राग नु आचरण करवू नहीं। पहला एनी श्रद्धा मां तो नक्की करे के भगवान आनंद नो नाथ प्रभु जे अंदर मां जणायो अने श्रद्धा मां आव्यो एमा ठरवू, ए चारित्र छे। व्रत तप उपवास आदि काई चारित्र नथी। ये बाह्य जो शुभ परिणाम है ना, उनको यहां बता रहे हैं। उपवास एटले उप नाम, यानी उप का अर्थ समीपमा, भगवान आनंदना नाथनी समीपमा वास एटले वसवू, अनुभव वडे वसवू, आत्मामा अनुभव वडे लीन थवू, ए चारित्र छे। समीपमा वास एटले रहेवू। हम कहते ना ये आनंद निवास, निर्मला निवास, ऐसा तो वो वास। और हमने वास का अर्थ क्या लिया? आज क्या है? उपवास। तो हम आज तो खाने का नहीं है, रसोई घर में जाके वास लेते बैठते हैं कि पेट तो बड़े कम से कम, वो नहीं है। ये उप किसके वो भूल जाता है, स्व के, स्व का चिंतन मनन और स्व में एकाग्रता करनी है, वो बात ख्याल में नहीं रहते हुए ऐसी उल्टी पुल्टी बात कि मैंने आज भोजन का त्याग किया। जो तेरा नहीं है उसका तूने त्याग किया है ना, ऐसी बात है। तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंदनो नाथ भगवान आत्मा ज्ञानमा जणायो एवो श्रद्धो के आ अंदर स्वरूपती देखायो ते आत्मा अने एमा ठरवू एनो अनुभव करवो ते चारित्र। आवा अनुभवनी मोहर छाप विषे पांचमी गाथा मां आवे छे के आत्मानो निज वैभव केवो छे। निरंतर जरतो आस्वादमां आवतो सुंदर जे आनंद तेनी छाप वाळू जे प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन तेनाथी जेनो जन्म छे। ये आत्मा में से ये बात निकलती है, ये बात बताई हमने, देखी थी पांचवी गाथा में क्या कहा, ये निरंतर झरतो आस्वाद मां आवतो सुंदर जे आनंद, यानी जब यह जीव अपने स्वभाव का अनुभव करता है तो जब तक उसको अनुभव चल रहा है वहां तो निरंतर क्या हो रहा है कि उसका आस्वाद आ रहा है। तो कैसा है वह आस्वाद, के सुंदर आनंद का है, तेनी छाप वाड़ू यानी उस टाइप का क्या कह रहे हैं, जे प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप, स्वसंवेदन यानि अपना, हाँ जी,
प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन,
तो मैंने क्या कहा
स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन,
अच्छा प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन यानि ये अपना स्व का अनुभव करना, स्व का वेदन करना, संवेदन करना, वह कैसा है तो कहते हैं वो प्रचुर स्व संवेदन स्वरूप, ऐसा जो स्व संवेदन है उसमें से ये निरंतर झरने वाला ऐसा जो सुंदर आनंद है तेनो जन्म थयो छे, यानी अपने आत्मा का अनुभव करते ही यह अनंत, मतलब यहाँ आनंद का वहां वेदन शुरू हो जाता है, आवो आनंद नो अनुभव ते आत्मानो साक्षात्कार छे, यानी किसी को जब आत्मानुभूति होती है तो उसे आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, और यही सम्यक दर्शन हुआ, ये सिग्निफिकेंट हुआ। यानी जब कोई कहता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह सब बातें हैं तो सब गलत है, जो यह समझ लेता है कि मुझे ऐसा आनंद आज तक नहीं आया, ये अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रियातीत आनंद है, इंद्रिय से जो प्राप्त होता है उस आनंद की बात नहीं है, हम इंद्रियों के आनंद के साथ अतीन्द्रिय आनंद की तुलना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि जिसके ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया हुआ है, वो स्वाद कहाँ से आया कि अपने स्वसंवेदन ज्ञान से, यानी अपने आत्मा का अनुभव करते ही उस आनंद का जन्म हुआ। तो आवो आनंदनो अनुभव ते आत्मानो साक्षात्कार छे, आत्मानो साक्षात्कार का अर्थ क्या हो गया, आत्मा के साथ भेटा हो गया उसका, वो आत्मा का अनुभव हो गया, ये साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मत लेना। अनुभव एम तो बीजा बधा अन्य मतियों मा पन कहे छे, पन ए अनुभव नथी। सभी लोग कहते हैं हम आपको आत्मा का अनुभव कराते हैं, आ प्रमाणे मोक्षार्थी पुरुषे, अभी किसकी बात कर रहे हैं, मोक्षार्थी पुरुषे प्रथम आत्मा ने जानवो पची तेनूज श्रद्धान करवू, कि आज आत्मा छे, यानी पहले तो आगम के माध्यम से आत्मा के बारे में जानो, और जब हम आत्मा के बारे में जानेंगे तब यही आत्मा है ऐसा श्रद्धान होगा, तो श्रद्धान के सही श्रद्धान के साथ, सम्यक श्रद्धान के साथ, सम्यक ज्ञान भी है और उसी में तू जानते रहेगा तो तेरा सम्यक चारित्र भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं, आ प्रमाणे मोक्षार्थी पुरुषे प्रथम आत्मा ने जानवो, किसी माध्यम, मतलब अनेक प्रकार है जानने के, आगम से, किसी गुरु के उपदेश से, इस तरह से आत्मा ने जानवो पची तेनूज श्रद्धान करूं, कि आज आत्मा छे, यानी इसके अलावा अन्य कोई आत्मा हो नहीं सकता है, बस यही आत्मा है, अने तेनु आचरण करवाथी अवश्य कर्मोती छूटी शकाशे, अने त्यार पछी तेनुज अनुचरण करवू, अनुभव वड़े तेमा लीन थमू, कारण के साध्य जे निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, ये कौन होगा, ये कौन सी अवस्था होगी, हाँ बोलो। हाँ सिद्ध अवस्था, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, कारण के साध्य, साध्य क्या है, सिद्ध अवस्था है ना, जे निष्कर्म अवस्था छे। निष्कर्म यानी कर्म जहां नहीं, आठवें कर्म निकल गए, अभेद शुद्ध स्वरूप तेनी सिद्धि नी ए रीते उपपत्ति छे, इस तरह से वह उत्पन्न होता है। अन्यथा अनुपपत्ति छे, यानी अदरवाइज वह उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। जे मोक्षार्थी थयो तेने मोक्ष अवस्था साध्य छे, ए राग विनानी कर्म विनानी निर्मल अवस्था छे, ए निर्मल अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप नी ए रीते उपपत्ति छे, अन्यथा अनुपपत्ति छे, एटले एनी प्राप्ति नो आ उपाय छे, बीजो कोई उपाय नथी। आ अनेकान छे, यानी आत्मा का अनुभव करने से भी मोक्ष होगा और राग करने से भी मोक्ष होगा, ऐसा अनेकांत नहीं है कि आ एक ज मार्ग छे बीजो नथी, ये अनेकांत है। आनाथी प्राप्ति थाय अने व्यवहारथी पण प्राप्ति थाय ए अनेकांत नथी, आनाथी ज थाय अने बीजे रीते न थाय ए अनेकांत छे। छोड़ाळामां आवे छे के आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखई आपको कष्ट दान। क्या कहते हैं, जो आत्मा के हित का हेतु ऐसा जो विराग ज्ञान है, वो ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ वाला है, कष्ट देने वाला है। लखई यानी वैसा जानता है कि अपने को बहुत तकलीफ देने वाला है। केटला कहे के पंच महाव्रत पाड़वा, त्याग करवो, परिश सहन करवा इत्यादि कष्ट सहन करिए तो धर्म थाय अने केवल ज्ञान नी प्राप्ति थाय। ऐसे कई कहने वाले मिलते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो कहे छे के कष्ट ए धर्म नथी, पण भगवान आत्मा में एकाग्र थता एमा आनंद आवे ए धर्म छे। आनंदनी लहरोनो अनुभव करता करता केवल ज्ञान ने पामे, पण कष्ट सहन करे तो पामे एम नथी। भाई वस्तु तो सहजानंद स्वरूप छे, स्वाभाविक आनंद ने आधीन थता अतीन्द्रिय आनंद ने वेदता वेदता केवल ज्ञान थई जाय छे। यही ये जीव को पता नहीं है, क्योंकि कभी उसने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ही नहीं लिया, क्योंकि वह स्वाद लेने से वो जो मुनि अवस्था का जो स्वाद क्या होगा, सिद्ध अवस्था का स्वाद कैसा होगा, इसकी उसको आइडिया आ जाती है, और फिर वो लालयित होके उसी के पीछे लगता है। ख्याल में आया? अगला पैराग्राफ है ना अभी। कहाँ तक आए थे? हाँ, स्वाभाविक आनंद ने आधीन थता, बराबर है ना, स्वाभाविक आनंद ने आधीन थता अतीन्द्रिय आनंद ने वेदता वेदता केवल ज्ञान थई जाय छे। आ वस्तुनु स्वरूप ज आवुं छे, अर्थात साध्यनी सिद्धि ए रीते थाय छे, बीजी रीते नहीं। केटलाक एम कहे छे के निश्चयथी थाय अने व्यवहारथी पण थाय। व्यवहार यानी यहां राग लेना। निश्चय पण मोक्ष मार्ग अने व्यवहार पण मोक्ष मार्ग, जेम निश्चय आदरणीय तेम व्यवहार पण आदरणीय, पण एम नथी। आहा, एकलो भगवान आत्मा जाणवो श्रद्धवो अने एमा ठरवू एज मोक्ष मार्ग छे। तो कहे छे व्यवहार कयो छे ने, भाई ए तो उपचार थी कथन करियुं छे, पण मोक्ष मार्ग बे नथी। मार्ग एटले कारण, मोक्ष मार्ग एटले मोक्षनु कारण, ए मोक्षनु कारण एक ज छे, बे कारण नथी। मोक्ष मार्ग एक ज छे एटले शुं के कार्य जे सिद्ध दशा एटले मोक्ष, एनु कारण एक निश्चय कारण ज छे, बीजू हो भले पण ए जाणवा माटे, बाकी कारण नहीं। बीजू हो भले, यानी जो बीच में जो राग आता है वो तो आएगा, वो जानने के लिए है, वो कोई मार्ग नहीं है। जो बीच में आता है तो ज्ञान क्या नहीं जानेगा, सब जानेगा ना, तो उसका भी ज्ञान कराते हैं और उपचार से उसको भी मोक्ष मार्ग कहते हैं उपचार से, लेकिन वो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। आवी स्थिति सीधी छे पन पक्षना व्याहो व्यामोह आड़े सूझ पड़े नहीं। यानी किसी एक पक्ष को हमने स्वीकार किया है और उसका जो अभी हम इसको छोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपनी क्या इज्जत रही, तो ये पक्ष का व्यामोह हुआ। ख्याल में, जो सही बात है, जो सही बात को समझने से स्व का कल्याण होना है, फिर भी अरे आज तक हमने ऐसा माना था, अभी हमने कुछ अलग मान लिया तो कैसा होगा, क्यों प्रॉब्लम, ऐसा हम सोचते तो आज ये बात हमारे गले पड़ती क्या, अरे आज तक हमने ऐसा नहीं माना, अभी ये क्या नया नया बात कर रहे तुम, नहीं नहीं ये तो अनादि काल से यही बात है, हमारी समझ में अभी आई है तो हमें नहीं लगती है। ये हमारे महाराष्ट्र में ऐसा बहुत है कि स्वामी जी के बताए हुए, मतलब क्या कहते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेक्चर भी देते हैं, लेकिन सिर्फ वो पढ़ना और बोलने जितना, अंदर में उतारेंगे नहीं। कितने हैं ऐसे, क्या करें, जो कहते हैं केटला गेम कहे जो हो गया ना, देखो देखो फिर से पढ़ता हूं, केटला गेम कहे जो निश्चय थी था ने व्यवहार थी पन था, निश्चय पन मोक्ष मार्ग ने व्यवहार पन मोक्ष मार्ग, जेम निश्चय आदरणीय तेम व्यवहार पन आदरणीय, पन एम नथी, एकलो भगवान आत्मा जाणवो श्रद्धवो अने एम एमा ठरवू, ए एक ज मोक्ष मार्ग छे। हां बहुत नीचे तक आए थे हम, बाकी व्यामो व्यामो व्यामो, हाँ पान पक्षना व्यामो आड़े सूझ पड़े नहीं, यानी हम किसी, मैंने कहा ना प्रेजुडाइज्ड माइंड हो जाएगा, यानी पक्ष का व्यामोह, यानी हमने तो आज तक ऐसा ही माना था, ऐसा ही समझा था, अभी हम छोड़ेंगे तो फिर क्या है। अरे पन तेरे तो भव भव का कल्याण हो जाए ऐसी बात है, तू उसे भूल जाता है और अपने मान कषाय के कारण वो बात छोड़ता नहीं, कि आज तक मैंने ये छोड़ा नहीं और अभी अभी मैं छोड़ू तो लोग मुझे हंसेंगे क्या नहीं। अरे पन अनंत तीर्थंकर तेरे को हंस रहे कि कैसा पागल है, ऐसा मानते होंगे क्या नहीं, हंस रहे यानी वो हंसेंगे तो नहीं, यानी कहने की बात है, क्योंकि आड़े सूझे नहीं, आने साचा रास्ते फरवू गोठे नहीं, गोठे ने कहने अच्छा नहीं लगता है, लाइक नहीं होता, आटला वर्ष शू करियूं ते धूल करियूं, वधु व्यर्थ सांभरने त्रण लोकना नाथ ने जगाड़ियो नहीं, यानी अपने स्वभाव को अपने आत्मा को तूने जागृति नहीं किया, एनी श्रद्धा करी नहीं, अने एमा ठर्यो नहीं, तो शू करियूं, काई करियूं नथी। हवे ए बात विशेष समझावे छे, जारे आ आत्मा ने अनुभव में आता जे अनेक पर्याय रूप भेदभावों तेमनी साथे मिश्रितपणु होवा छता, एटले भगवान आत्मा ना ज्ञान में पुण्य पाप दया दान व्रत आदि अनेक पर्याय रूप भेदभावों तेनी साथे मिश्रित होवा छता सर्व प्रकारे भेद ज्ञान में प्रवीणपना थी आ अनुभूति छे तेज हूँ छू, अर्थात जानवानी दशा ए अनुभव मा आवे तेज हूँ छू, अने ज्ञान मा जणाय ते दयादान रागादी व्यवहार ते हूँ नथी, एम आत्मज्ञान प्राप्त थाय छे। ये क्या कह रहे, देखो जरा ख्याल में आई बात, देखो यहाँ ये समझा रहे हैं, पहले क्या बात कही के जारे आ आत्मानो अनुभव, आत्मा ने अनुभव मा आवता, क्या आत्मा के अनुभव में क्या आया कि जे अनेक पर्याय रूप भेदभावो तेमनी साथे मिश्रितपणु हुआ छता, यानी जो मेरे में अनेक भाव जो पैदा हो रहे हैं वो ज्ञान का जो स्वरूप है और राग का स्वरूप है इनका मिश्रण हो गया है, तो मिश्रित पण हुआ छता अभी इसमें क्या कह रहे हैं, एटले भगवान आत्मा ना ज्ञान मां पुण्य पाप दया दान व्रत आदि अनेक पर्याय रूप भेदभाव, ये एक पोर्शन, एनी साथे मिश्रित हुआ छता सर्व प्रकारे भेद ज्ञान मां प्रवीणपना थी, यानी जिसने आत्मा का अनुभव किया है और सारे जो पर पदार्थ है या उनके जो भाव है या अपने में उठने वाले जो विकारी परिणाम है इनसे भेद ज्ञान करने में जो प्रवीण है, तो क्या कह रहे हैं, सर्व प्रकारे भेद ज्ञान मां प्रवीणपना थी आ अनुभूति छे तेज हूं छू, ऐसा जिसने मान लिया है अर्थात जानवानी दशा जे अनुभव मां आवे छे तेज हूं छू। अभी उसने तो नक्की किया श्रद्धा में तो यही बात है, लेकिन ज्ञान में क्या क्या आ रहा है, ज्ञान में तो मैं स्वयं तो आ ही रहा हूं, उसके अलावा ज्ञान मां जणाय छे ते दयादान रागादि व्यवहार ते हूं नहीं, एम आत्मज्ञान प्राप्त थाय छे। यानी जानने में तो दोनों बातें आएगी लेकिन वहां जो अनुभव में जो मेरा स्वरूप आ रहा है वो मैं हूं और ये राग द्वेष के जो परिणाम है पुण्य पाप के जो परिणाम है वो मेरे नहीं है, ऐसे उस जीव को ज्ञान में आएगा अनुभव में आएगा। एम आत्मज्ञान प्राप्त थाय छे, आई कहूं छे ने के ज्ञान मां जणाय के आ रागादि छे पण ए मोक्ष मार्ग नथी, बारमी गाथा पण गाथा मां पण कही होती ने व्यवहार ने ते काळे जाणेलो प्रयोजनवान छे, जाणेलो प्रयोजनवान छे का अर्थ समझ में आया, याद है किसको, कौन बताएगा, जसुबेन आप बताएगी जाने लो प्रयोजनवान छे, आप बारहवीं गाथा में थी क्या, नहीं याद नहीं है, हाँ बोलो नरेंद्र भाई, हाँ ये व्यवहार जो है यानी जो राग है वह जानने लायक है, अवलंबन लेने लायक नहीं, अनुसरने लायक नहीं है, तो जाने लो प्रयोजनवान, जानने के पुरता प्रयोजन, क्यों ज्ञान में क्या नहीं जाना जाएगा, सभी जाएगा लेकिन उसका अवलंबन नहीं लेना है, ये ऐसे राग के परिणाम आते हैं जानो बस, तो उसको कहते हैं जाने लो प्रयोजनवान, क्योंकि ग्यारहवीं गाथा में तो ये बताया ना कि इसमें व्यवहार व्यवहार नहीं के चार भेद बताए थे, तो वो कैसे हैं कि वो सब अभूतार्थ है असत्यार्थ है, और बारहवीं गाथा में कहा कि भले है लेकिन वो जानने पुरते हैं, जानना चाहिए लेकिन अनुसरना नहीं चाहिए, तो इसलिए कहा जाने लो प्रयोजनवान। अभी चार व्यवहार नहीं जो थे नहीं पूछा से जाने क्योंकि नाम भी तो याद रखना पहला मुश्किल है, फिर एक एक उदाहरण देना उससे भी, कल पूछूंगा पढ़ के आना, हाँ सबको आना चाहिए ना, तुम तो एवर रेडी हो, हाँ बोलना चाहते हो, हाँ बोलो, चार नाम तो बता, अभी उदाहरण देके समझाओ भैया, इसलिए मैंने बोला था कि कल आना करके,
पहले सद्भुत को लेना क्या असद्भुत को,
कल 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 मुझे याद देना, हाँ सबके नाम भी याद रखना चाहिए और क्रम भी तो हमें याद करना ही है, उसके उदाहरण तो बहुत आसान है, हा? थोड़ा सा रिवाइव हो जाए ना, कल यानी मंडे हो, नहीं तो फिर बोलोगे कल आपने बोला था नहीं लिया अभी हम नहीं तैयार है, ऐसा नहीं चलेगा, हाँ तो क्या कह रहे, देखो बारहवीं गाथा में अपन कहे कि व्यवहार ने ते काढ़े जाने लो प्रयोजनवान छे, ते काढ़े ते समय जेटला प्रमाण में रागनी अशुद्धता ना अने वितराकता शुद्धता ना अंशो छे तेने जानवा ए भेद रूप व्यवहार ज्ञान छे, ए जाने लो प्रयोजनवान छे, आदरे लो प्रयोजनवान नथी, यानी वो आदर करने लायक नहीं है, उसके प्रयोजन के लिए नहीं है व्यवहार है, वो जानने के लिए है। आवी चोखी स्पष्ट बात हुआ छता घना वर्षो थी एटले अनंत काल थी मान्यू मनायू होए एटले फरवू कठन पड़े, पन जीवन जाय छे जीवन। अभी क्या बोला उन्होंने, एक एक समय में तेरा जीवन खत्म हो रहा है, और मैंने अभी बताया क्षणे क्षणे मौत ना मुंडी जा रही हो, क्या फर्क है बताओ ख्याल में। तो जीवन जाय छे जीवन, खोटी मान्यता में आयुष्य पूरु थई जाय छे, मार्ग तो आ छे भाई। 32 नंबर पान, आत्मा ने अनुभव ना वेदन में आवता रागादि जे अनेक पर्याय रूप भेदभावो तेमनी साथे मिश्रितपणु एटले ज्ञान ने राग बन्ने एकमेकपणे लागवापणु हतु। क्या कह रहे हैं, अभी आत्मा का वेदन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या लगता था, दोनों एक ही। अभी आत्मा ने अनुभव ना वेदन में आवता, अभी क्या हो गया, आत्मा का अनुभव उसने किया, तब क्या हो रहा है, रागादि जे अनेक पर्याय रूप भेदभावो हता तेमनी साथे मिश्रित पणु एटले ध्यान अने राग बन्ने एक पण एकमेक पणे लागवा पणु हतु, ते जारे सर्व प्रकारे भेद ज्ञान नु प्रवीण पणु थवाथी अर्थात राग थी खसीने स्वभाव तरफ झुकाव थवाथी आ अनुभूति छे तेज हूँ छू। ज्ञान मा जे अनुभूति स्वरूप त्रिकाळी जणायो तेज हूँ छू एवु आत्मज्ञान प्राप्त थाय छे, राग थी भिन्न पड़ी ने आ अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा ते हूँ छूं एवा आत्मज्ञान थी प्राप्त थतुं आ आत्मा शुद्ध अखंड अभेद एक चैतन्य रूप जेवो ज्ञान मां जणाव्यो तेवो छे एवी प्रतीति जेनुं लक्षण छे एवु श्रद्धान उदय थाय छे। ये अभी तक हमने जो पढ़ा था उसी को फिर से दोबारा उन्होंने रिपीट किया हुआ। भेद ज्ञान नी प्रवीणता थी अर्थात भेद ज्ञान यानी क्या है, दो बातों में जुदा जुदापन करना। तो देखो भेद ज्ञान में एक बात ध्यान रखना कि जब हम दो पार्टी में डिवीजन करते हैं तो उसमें एक तो स्वयं होना ही चाहिए तो भेद ज्ञान सच्चा, नहीं तो दो अलग अलग कोई हो और वो जुदा ऐसी बात नहीं है। तो कहते भेद ज्ञान नी प्रवीणता थी यानी जिसने स्व जुदा और बाकी सब अलग ऐसा जब जाना है उसमें प्रवीणता प्राप्त की है अर्थात अभी बाकी की बात नहीं करे, राग थी भिन्न पड़ी भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा ना अनुभव थी आत्मा अखंड एक न्यायक रूप जेवो जानियो तेवीज तेने प्रतीति करी जान्या विना ए छे एम मान्यू कोने। यानी यहां जानने के लिए विशेष एम्फसाइज कर रहे, जानना आवश्यक है, सम्यक दर्शन नु लक्षण प्रतीति छे। पंचाध्यायी मा चार बोल लीधा छे, श्रद्धा प्रतीति रुचि ज्ञाननी पर्याय, क्या एने ज्ञाननी पर्याय गणी ये तो व्यवहार थी कथन छे। यानी श्रद्धा को भी ज्ञान की पर्याय वहां कहा है लेकिन वो क्या कहते हैं, वह व्यवहार का कथन है। आई तो आ निश्चय नी बात छे के जे आत्मा ज्ञान मां जणायो एनी जे श्रद्धा थई ते प्रतीति माटे सम्यक दर्शन नु लक्षण प्रतीति छे। आत्मा आखी चीज छे तेनु ज्ञान ए आत्मज्ञान कयुं छे, आत्मा मां गुणनू के पर्यायनू ज्ञान ते आत्मज्ञान एम नथी। यानी जब ये प्राइमरी पोजीशन में है यानी चौथे गुण स्थान में जाने वाला जीव वो तो उसकी तो ज्ञानी में सबसे निचली भूमिका है ना, तो उस समय भी कहते हैं कि उस चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को जब आत्मा का अनुभव होता है तब ये ज्ञान है, ये श्रद्धा का वेदन है, ये अलग अलग गुणों का वेदन है या अलग अलग पर्यायों का वेदन है, ऐसा होता नहीं। वो अखंड आत्मा जो है अनंत गुणों का पिंड अनंत पर्यायों का ऐसा जो एक समुच्चय रूप जो आत्मा है, उसका अखंड का अभेद का उसे अनुभव होता है। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं कि आत्मा आखी चीज छे, तेनु ज्ञान ए आत्मज्ञान कयु छे। आत्मा मा गुणनु के पर्याय नु ज्ञान ते आत्मज्ञान नथी। आखो आत्मा एटले जे त्रिकाणी ध्रुव अखंड एक प्रतिभास में पूर्ण स्वरूप ते पर्याय मा जणायो, एनु जे ज्ञान थयु ते पर्याय आत्मज्ञान छे। वो पर्याय में आत्मज्ञान हुआ, सादी भाषा छे, पन लोको एकांत एकांत करे छे। व्यवहारथी थाय एम व्यवहार ने साधन कहता नथी एम कहे छे, पन भाई सम्यक एकांत छे जो बधे पड़ियो छे ने। श्रीमदे पन कहू छे के अनेकांत नु ज्ञान पन एकांत एवा निजपदनी प्राप्ति सिवाय अन्य कोई हेतु ए हितकारी नथी। क्या समझाया? देखो बताते हैं, जो एक वस्तु है ना, तो वस्तु में अनेक धर्म है। तो वस्तु को जानने के लिए हमें उसे अनेक अंत को भी जानना है। यानी सिर्फ नित्य है, सिर्फ अनित्य है, ऐसा नहीं। नित्य भी है, अनित्य भी है, तो उसमें कौन सी अपेक्षा लगती है? ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। वैसे अनेक अपेक्षा से अनेकांत स्वरूप जो वस्तु है उसको जानना, अब क्या कहते हैं अनेकांत नु ज्ञान। वो तो हमने जाना, पण शू कहे छे एकांत एवा निजपदनी प्राप्ति। अभी है तो वस्तु अनेकांत स्वरूप, आत्मा जो है वो अनेक धर्मों से युक्त है, लेकिन उसने क्या वो क्या बताना चाहते हैं कि वो एनु जे ज्ञान ना कारणे मने पोताना ज्ञान नो स्वभाव ख्याल में आव्यो अने मैं एकांत निजपदनी प्राप्ति करी। तो यहाँ कह रहे अभी पढ़ना, अनेकांत नु ज्ञान पन एकांत एवा निजपदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए अन्य कोई हेतुए हितकारी नथी। यानी अन्य कोई भी उससे कोई फल, कोई अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा, कुछ फलित नहीं होने वाला है। तो ये अनेकांत का ज्ञान करके आत्मज्ञान ही करना चाहिए, और वो आत्मज्ञान करना यही ये अनेकांत समझने का उपयोग है या उसका हेतु है, आत्मा की प्राप्ति होना। अनेकांत नु ज्ञान पन एकांत एवा निजपदनी प्राप्ति सिवाय अन्य कोई हेतु हितकारी नथी। तो वो जाने और अपने आत्मा का अनुभव करे, ऐसा होना चाहिए। सम्यक एकांत एवा आत्मा ना हित सिवाय बीजू कोई अनेकांत हो ही शके नहीं। देखो हर ज्ञानी जीव एक ही बात बताएंगे और उसे हमें समझना है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकण सदा देते रहो।